भगवान कृष्ण अन्यत्र भी यही कहते हैं अर्जुन से कि अज्ञान के कारण तेरे जीवन में मोह आया है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, यह वे कह रहे हैं अज्ञान के कारण मोह पैदा होता है, एक आवरण आता है, इसीलिए जंतु जीव मोह के वश हो जाता है और दुखी होता है, संतप्त होता है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः, कहते हैं ज्ञान के द्वारा जिनके जीवन का वह अज्ञान नष्ट हो गया है, तेषां आदित्यवज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, उनके जीवन में वह ज्ञान आदित्य के समान, सूर्य के समान उस पर तत्व को प्रकाशित कर देता है। तो कल मैंने आपके समक्ष एक बात यह भी कही थी कि जो नींव की बात है, आधारभूत बात है, वह है ज्ञान। उसको हम कहते हैं सिद्ध ज्ञान, या उसी को कहते हैं विज्ञान। विज्ञान में हमें पहुंचना है। अब यह जो ज्ञान की बात कही जाती है, जो साधनात्मक ज्ञान है, जिसको हमने कहा ज्ञान का रास्ता लेकर के हमें आगे बढ़ना है, यह उस सिद्ध ज्ञान को पाने का एक उपाय। यह जो साधन ज्ञान है अज्ञान का नाश करता है, और जो हमारे भीतर वह सिद्ध ज्ञान है, हमारा अपना स्वरूप, वह तो भीतर में है ही प्रकाशित, पर मोह के आवरण के कारण जो आवरण अज्ञान से पैदा हुआ है, हम अपने स्वरूप से परिचित नहीं हो पाते हैं। और जब साधन ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है, फलस्वरूप मोह का पर्दा फट जाता है, तो जो सिद्ध ज्ञान हमारा अपना स्वरूप, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह अपने आप प्रकाशित हो जाता है। वह स्वयं प्रकाशित है ही, जो पर्दा बाधक था वह हट गया। तो हम यह कह रहे थे कल कि जैसे ज्ञान इस सिद्ध ज्ञान को प्रकाशित करने का एक साधन, अज्ञान का निवारण करने के द्वारा, वैसे ही कर्म भी साधन, भक्ति भी साधन और ध्यान भी साधन, इन चारों के द्वारा हम वस्तुतः उसी आधारभूत लक्ष्य में पहुंचना चाहते हैं, और वह है अपने आत्मस्वरूप का अनुभव, विज्ञान की प्राप्ति। यही मानव जीवन का लक्ष्य है कि मैं वही हूं, सो अहम, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो वेदांत के महावाक्य हैं, इन महावाक्यों की अनुभूति करना ही हमारी समस्त साधना का लक्ष्य है। अब इस अनुभूति के लिए चाहे हम प्रबलता से ज्ञान का सहारा ले लें, या हमारी प्रवृत्ति अधिक अनुकूल भावना के है तो भक्ति का सहारा ले लें, या हमें ध्यान करना अधिक अच्छा लगता है तो ध्यान योग का पथ अवलंबित कर लें, या हम कर्म योगी हैं, कर्म में मन अधिक लगता है तो कर्म के माध्यम से अपने भीतर का मल दूर कर लें। तो ये रास्ते हैं जिन रास्तों से होकर के उस परम सिद्ध ज्ञान को हम जो भीतर में अवस्थित है उसे देखने का प्रयास करते हैं। यह गीता का ध्वनित अर्थ है, और इसीलिए कल हमने कहा था कि किसी भी अध्याय को आप देखेंगे वहां पर एक मार्ग की प्रमुख चर्चा है, पर इसके साथ ही साथ अन्य मार्गों की चर्चा भी संकेत के रूप में की गई है। जैसे चौथे अध्याय में कर्म की भी चर्चा है, पर ज्ञान की कम चर्चा नहीं है। वहां पर आप भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ की बातें सुनेंगे कि प्राणायाम रूपी यज्ञ भी है और भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव्य यज्ञ हैं, पर वहां पर भी यह कह दिया श्रेयान द्रव्य में आत यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ, जितने भी द्रव्य के द्वारा साधित होने वाले यज्ञ हैं उन सबसे श्रेष्ठ यह ज्ञान यज्ञ है। जितने भी जीवन के कर्म हैं अंत में ज्ञान में ही उनकी परिसमाप्ति होती है, तो ज्ञान को कैसे प्राप्त करें? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तत्वदर्शियों के पास चले जाओ, ज्ञानियों के पास चले जाओ और जाकर के नमस्कार करो, प्रणाम करो। प्रणाम करने का मतलब अपनी विनय प्रदर्शित करना कि मैं आपकी परीक्षा लेने नहीं आया हूं, मैं स्वयं शंकाओं से आक्रांत हो रहा हूं, तो आप कृपा करके मेरी शंकाओं को दूर कीजिए और जाकर के उनकी सेवा करो और प्रश्न करो। तो यह जो कहा गया तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिपात प्रणाम परिप्रश्नेन सेवया सेवा करो और प्रश्न करो, अपनी शंका का समाधान कर लो, और तब ये ज्ञानी जन जो हैं, तत्वदर्शी जन जो हैं, वे तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर प्रदान करेंगे, उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। और वहीं पर यह कहा गया यज्ञात्वान पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण दक्षसि आत्मने अथोमयि। एक बार उस ज्ञान की अनुभूति तुम्हें हो जाए पार्थ, फिर कभी तुम इस प्रकार मोह में नहीं पड़ोगे जैसे अभी तुम पड़े हो। और फलस्वरूप जब ज्ञान की अनुभूति हो गई तो क्या होगा तुम्हारे जीवन में? येन भूतानि अशेषेण द्रक्षसि आत्मनि अथोमयि। तुम समस्त जगत को अपने भीतर और तुम अपने आप को मेरे भीतर देखोगे। यह ज्ञान की बड़ी गूढ़ प्रक्रिया है और उस पर विचार करने का अभी समय तो है नहीं, तो इसलिए उसका जो विस्तृत विचार है कभी अगली बार के लिए रख देते हैं। यहां केवल संकेत करते हुए भागते हुए चले जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बार वह ज्ञान तुम्हारे जीवन में आ जाए अनुभूति के रूप में, तो फिर कभी तुम मोह को प्राप्त नहीं होगे, जैसा कि मोह तुम्हें इस समय हुआ है। अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवे नैव विजिनं संतरिष्यसि। कि तुम पापियों की भी पापी क्यों न हो, पर यदि तुम्हारे जीवन में यह ज्ञान आ गया तो ज्ञान नौका के द्वारा तुम समस्त पापों के पार चले जाओगे। पार्थ, चिंता मत करो। कैसे पार चले जाओगे वह उपाय भी वे बता देते हैं। यथेधान से समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे जलती हुई आग सब कुछ को जला करके राख कर देती है, उसी प्रकार जब ज्ञानाग्नि भीतर में प्रदीप्त हो जाती है तो यह जितना पाप है जितना अशुभ है वह सारा का सारा जल करके उसमें राख हो जाता है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कह रहे हैं तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। यह जो पराशांति की बात कल हम कह रहे थे कि पराशांति किसके जीवन में आती है, कह रहे हैं ज्ञान जिसके जीवन में उतर गया वह उस पराशांति का अधिकारी बन गया। नारद ज्ञानी तो बहुत थे परंतु उनके जीवन में शांति नहीं आ पाई थी। कल आपके समक्ष थोड़ा सा वह उदाहरण रखा जो वार्तालाप के रूप में था नारद और सनत कुमार के बीच। नारद ने लंबी फेहरिस्त बता दी कि वे क्या क्या जानते हैं। सनत कुमार ने पूछा था तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें शिक्षा प्रदान करूं, ठीक है, पर पहले तुम यह बता दो कि तुम क्या क्या जानते हो, तो जो तुम नहीं जानते होगे उसका उपदेश करूंगा। तो बहुत लंबी सूची नारद ने बताई। सनत कुमार बोले भाई मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हें सिखाने लायक क्या है, तुम तो सब कुछ जानते हो। तो नारद की बात आपने सुनी कल, आपके स्मरण में होगी। नारद कहते हैं शब्द विदेव अहम अस्मि न आत्मवि अतः शोचामि, मैं केवल शब्दों को जानता हूं भगवान, मैं अपने आप को नहीं जानता, आत्मा को नहीं जानता हूं, अतः शोचामि इसलिए मैं शोक कर रहा हूं। श्रुतम ही एव मे भगवत दृशेभ्यः तरति शोकम आत्मविद इति तम मां भगवान शोकस्य पारम तारयतु। मैंने आप जैसे महानुभावों से सुना है कि जो अपने आप को जान लेता है वह समस्त अज्ञान को समस्त शोक को पार कर लेता है, तो प्रभु आप मुझे शोक के पार ले चलिए उस आत्मा का ज्ञान दे करके। तब सनत कुमार ने उत्तर में कहा कि अब तक तुम तो जानते थे वह केवल वाचारंभण था, वाचारंभणो विकारम नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। जैसे हम मिट्टी से बने हुए बहुत से खिलौनों को जान ले, मैं खिलौनों को जानता हूं, मिट्टी से बना सिपाही है, मिट्टी से बना घोड़ा है, मिट्टी से बनी गाड़ी है, मिट्टी से कितनी चीजें दिखाई देती हैं। केवल मैं खिलौनों को सत्य मानूं तो मेरा ज्ञान कहना चाहिए कि पूरा नहीं है। मैं घोड़े को जानता हूं, मैं गाड़ी को जानता हूं, मैं सिपाही को जानता हूं, पर यदि मैं मिट्टी को न जानूं जिससे ये सारी चीजें बनी हैं तो मेरा ज्ञान अधूरा है। और इसीलिए कहा कि मृत्तिका इत्येव सत्यम, यह तुम जानो इन समस्त वस्तुओं के भीतर में मिट्टी ही सत्य है। इसी प्रकार नाम रूपात्मक जगत में जो कुछ तुमने जाना है नारद, वेदों में जो कुछ तुमने जाना है, शास्त्रों में जो कुछ तुमने पढ़ा है, जितनी जानकारी तुमने प्राप्त की है, वस्तुतः नाम और रूप को छोड़कर के तो और कुछ नहीं है ना, उसका एक रूप है, उसका एक नाम है, यही तो जगत है। नाम रूपात्मक जगत को छोड़ तो और तुमने कुछ नहीं जाना, पर वस्तुतः जानो कि नामी कौन, नाम के पीछे, रूपी कौन, रूप के पीछे। यदि तुम नामी और रूपी को जान लो तो देखोगे वही एक आत्म तत्व है। और फिर उसके बाद वे समझाते हैं कि क्या भूमा है और क्या अल्प है। भूमैव सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, तुम सुख की खोज कर रहे हो नारद, पर अल्प में सुख नहीं है, सुख तो भूमा में है। अल्प क्या है और भूमा क्या है, यत्र अन्यत पश्यति अन्यत विजानाति अन्यत शृणोति तदल्पम, जहां पर मैं अपने से भिन्न देखता हूं, अपने से भिन्न सुनता हूं, अपने से भिन्न जानता हूं, वह अल्प है। और भूमा क्या है, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति सभूमा, जहां मैं अपने से भिन्न कुछ नहीं देखता, अपने से भिन्न कुछ नहीं सुनता, अपने से भिन्न कुछ नहीं जानता, वह भूमा है। और भूमा में ही सुख है, उसी में शांति है। कल हम परम शांति की बात कह रहे थे, तो देवर्षि नारद को परम शांति का संधान सनत कुमार देते हैं, तुमने वेदों को जाना, तुमने नक्षत्रों को जाना, क्षत्र विद्या तुमने जानी, सारी विद्याएं तुमने हस्तगत कर ली, पर तुम ठीक ही कहते हो कि तुमने आत्मा को नहीं जाना, इसलिए शोक कर रहे हो, और शोक इसीलिए होता है। तो यहां पर दूसरे अध्याय में विशेष रूप से और अन्य अध्यायों में भी ज्ञान पर कितना जोर दिया गया है भगवान कृष्ण के द्वारा, क्योंकि ज्ञान फंडामेंटल है, वह आधार है, वही नींव है। ऐसा नहीं कि भक्ति और ज्ञान दोनों की तुलना में भक्ति श्रेष्ठ हो और ज्ञान कनिष्ठ हो, ऐसा मत समझिएगा। कि सब जगह कहा गया है ऋते ज्ञान आत्म मुक्ति ही, यह उपनिषद का वाक्य है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। वह ठीक है कि मुकुति निरादर भगति लुभाने, हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि जो ऐसे जन हैं वे मुक्ति का निरादर करते हैं, वे भक्ति में प्रलुब्ध होते हैं, उनको भक्ति की चाह होती है, ठीक है, वह एक स्थिति है। पर आप मुक्ति की बात को काट नहीं सकते। यदि आप उसे काटते हैं तो आप नींव पर प्रहार करते हैं, आप आधार को ही खंडित कर देते हैं। तो गीता में जो आधार है वह ज्ञान का आधार है, वह मानो मुक्ति का आधार। मुक्ति का मंदिर, मैं बंधन में हूं, बस इस बंधन से मुझे मुक्त होना है। देह ने मुझे बांध लिया है, मन ने मुझे बांध लिया है, मरने के बाद मुझे मुक्ति मिलेगी, यह धारणा भी शास्त्रों में है। पर गीता उस धारणा को भले ही मानती हो, पर किस धारणा को सामने रखती है, इसी जीवन में मुक्त हो जाओ, इस धारणा पर जोर देती है गीता। इहैव तैजित सर्व ये शाम साम्य स्थितम मनहा, इसी जीवन में जिसने जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, मन को जीत लिया, इहैव तैजित सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मनहा, जिसने सर्ग को जीत लिया, सर्ग माने रिलेटिविटी, सापेक्षता, जिसको हम कहते हैं सापेक्षता, आपेक्षिकता, यह संसार है। तो जिसने इस संसार को जीत लिया, मन को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, रिलेटिविटी को जिसने जीत लिया है, वह तो बस इसी जीवन में, इहैव इसी जीवन में जीत लो। इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति ना चेद इहा वेदित महति विनष्टि। केनोपनिषद कहता है कि ज्ञान को इसी जीवन में पालो, मुक्ति तो यही प्राप्तव्य है। मरने के बाद मुक्ति हुई, ठीक है, हम उसे मानते हैं सिद्धांत की दृष्टि से, पर गीता इस बात पर जोर देती है कि तुम्हें मुक्त इसी जीवन में होना है। मैं उस मुक्ति का आनंद इसी जीवन में लेना चाहता हूं कि मैं देखूं, अभी तक देह मुझे बांधती थी, अब मैं देह पर नियंत्रण रखता हूं, अभी तक मन मुझे बांधता था, अब मैं मन को चलाता हूं। कितना आनंद आता है जब मैं देखता हूं कि अब मैं मन को चलाता हूं, मन मुझे नहीं चला पाता है, अभी तक तो मन ही मुझे नचाया करता था, इंद्रियां मुझे नचाया करती थी। आप कल्पना में ही इस सुख का आनंद तो लीजिए, कल्पना में ही इस विचार का आनंद तो लें कि हम जब इंद्रियों पर हावी हो जाते हैं, मन पर हावी हो जाते हैं, जब हम मन को डिक्टेट करते हैं, ऐसी भी अवस्था जीवन में आती है और वही मुक्ति की अवस्था है। और ज्ञान के द्वारा हम इसी मुक्ति को पाने की चेष्टा करते हैं और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यह गीता मानती है। और कल हमने इसके उदाहरण भी आपके समक्ष रखे थे। यह है परम शांति की अवस्था जिसे पाने के लिए गीता हमारा आह्वान करती है। अब यह जो शांति की अवस्था है उसको कैसे प्राप्त करें, विवेचन के द्वारा। तो विवेचन कैसे हो, कल हमने कहा था, एक बात आपके समक्ष रखी थी कि आज आत्म तत्व की प्रतीति हमें होती नहीं है। आज जब हम आत्मा के बारे में सोचते हैं तो देह ही दिखाई देती है, या बहुत अधिक हुआ तो मन दिखाई देता है, परंतु आत्म तत्व देह और मन से अलग है, इसकी प्रतीति आज नहीं है। श्री रामकृष्ण के उदाहरण का स्मरण कीजिए, जहां उन्होंने कहा कि अरे डाब में रस भरा है रस, नारियल में रस भरा है रस, इसीलिए उसका गूदा छिलके से अलग नहीं होता है रे, रस को सूखने दे, देखेगा अपने आप भेला अलग हो जाएगा, गड़गड़ आवाज करेगा। हमारे भीतर में भी वासना का रस है, और वासना का रस जब ज्ञान के द्वारा सुखा दिया जाता है, औटा दिया जाता है, तो बस हमारे भीतर की प्रतीति, आत्मा की प्रतीति होती है। यह जीवन का लक्ष्य। श्री रामकृष्ण इसीलिए कहा करते थे अरे जान लो, वे भक्ति की भाषा में कहते थे भगवान को जान लो। भगवान को जानना यह उसी लक्ष्य का नाम है। आत्मा को जानना ज्ञान की दृष्टि से, भगवान को जानना भक्ति की दृष्टि से, परमात्मा का साक्षात्कार करना ध्यान योग की दृष्टि से। तो कहने का मतलब यह है कि लक्ष्य एक ही है, भाषा भिन्न भिन्न हो जाती है। एक माझी किसी पंडित को नदी के पार ले जा रहा था। अब जो व्यक्ति पंडित होता है स्वाभाविक ही उसे उपदेश देने की आदत हो जाती है। कोई भी सामने मिलता है तो कहता अच्छा तुमने वह किताब पढ़ी। अब बेचारा अपढ़ माझी नाविक वह कहां कौन सी किताब पढ़ने जाएगा। अच्छा तुमने वेदों को पढ़ा। कहा जी कैसा पूछते हो जी पंडित जी, अरे हम क्या वेद पढ़ेंगे जी, अरे वेद हम जानते भी नहीं। अरे फिर तो तुम्हारी एक चौथाई जिंदगी बेकार गई। अब बेचारा डांट चला रहा है, ले जा रहा है नदी से पार पंडित जी को। पंडित जी ने देखा कि माझी चुप हो गया। अच्छा ठीक है वेद तुमने नहीं जाने, पर ये बताओ तुमने इतिहास तो पढ़ा होगा। इतिहास क्या बला है जी, माझी ने पूछा। अच्छा तुम इतिहास भी नहीं जानते, अरे फिर तो तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार चली गई। अब माझी चुप डांट चला रहा है। थोड़ी देर बाद पंडित जी से फिर चुप न रहा गया। पूछा अच्छा ठीक है तुम ये सब नहीं जानते हो, पर साहित्य तो जरूर जानते होगे। साहित्य में कविता होती है, कितने सुंदर सुंदर अलंकार होते हैं, तो कम से कम साहित्य की बात तो तुम जानते होगे। ये साहित्य किस चिड़िया का नाम है जी, हमको तो पता ही नहीं साहित्य क्या है, आपके ही मुंह से पहली बार साहित्य सुन रहे हैं। अरे तब तो तुम्हारी तीन चौथाई जिंदगी बेकार चली गई। और डांट चला रहा है, इतने में काली घटाएं छा गईं, जोरों से आंधी चलने लगी, नाव डगमगाने लगी। माझी ने पूछा अच्छा पंडित जी तुमने वेद पढ़े, तुमने इतिहास पढ़ा, तुमने साहित्य पढ़ा, अच्छा तुमको तैरना आता है तैरना। पंडित जी बोले नहीं आता। तो छलांग मारते हुए माझी ने कहा तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार चली गई, अब मैं तो तैर के निकल जाऊंगा। श्री रामकृष्ण कथा कहते हैं ये जो तैरना जो जानता है उसने तो अपनी जिंदगी को बचा लिया। साहित्य किस काम का, जब प्राणों पर संकट आ बने वहां पर इतिहास किस काम का, वेद किस काम के। तो श्री रामकृष्ण कहते थे यह भगवान को जो जानना है वह तैरना है, जो जानता है वह तैर लेता है, उसने जान लिया, उसको अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। तो लक्ष्य का निर्धारण इस प्रकार से किया, यह है श्री रामकृष्ण की दृष्टि में। अब ज्ञान की बात में हमने क्या देखा, मां तो विचार है, आत्मा अनात्मा का विचार है, और वह विचार कई तरीकों से आता है, और इसके संकेत भी हमें गीता में प्राप्त होते हैं। संकेत का मतलब कि बुद्धि है, मन है, शरीर है, प्राण है, इंद्रियां हैं। आप जब पढ़ेंगे चौथे अध्याय में तो वहां पर एक एक स्तर पढ़ेंगे। तो एक एक स्तर माने जिस भाषा को हम जरा अधिक अच्छी तरह जानते हैं उसमें कहेंगे पंचकोशों की बात है। कि पंचकोश माने यह जो आत्म तत्व है यह मानो पांच कोशों के भीतर में लिपटा है। पांच कोश, अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। ऐसे ये पांच कोश हैं जिनके द्वारा यह लिपटा हुआ है आत्म तत्व। आप पढ़ते हैं चौथे अध्याय के अंत अंत में पढ़ेंगे जहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कैसे मुझे देह से ऊपर उठना है, कहां उठना है, आऊंगा मैं प्राणों में, फिर प्राण से भी ऊपर उठना है मैं मन में आऊंगा, मन से भी ऊपर उठ करके बुद्धि में आऊंगा, और बुद्धि से भी ऊपर उठ करके अहंकार में आऊंगा, और फिर उसके बाद अहंकार का भेदन करूंगा। इसका वर्णन आप उसमें पढ़ते हैं। इसको हम वेदांत की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से पंचकोश वेदन कहते हैं। कि पंचकोश का मतलब अन्नमय, जैसे कहा कोश, फिर उसके भीतर प्राणमय कोश वाइचल, उसके भीतर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इनको समझाने का भी समय नहीं। लंबा यह प्रकरण है, पर एक संकेत देते जा रहे हैं कि ज्ञान में क्या किया जाता है। तो ये पांच कोश हुए, और ऐसा कहा गया कि आत्म तत्व इन पांचों कोशों के द्वारा लिपटा हुआ है, ये लेयर्स हैं, और इन परतों में आत्मा मानो आवरित हो गया है, मानो छिपसा गया है, मानो छिपसा गया है। मैं मानो शब्द को रेखांकित करता जा रहा हूं, तो यह मानो छिपसा गया है। तो चाहे आप पंच कोश भेदन की बात कहें, कैसे भेदते हैं, तो ज्ञान की प्रक्रिया में नेति नेति यह आत्मा नहीं है, या मैं मेरा जो स्वरूप है आत्म तत्व मैं यह नहीं हूं, मैं अन्नमय कोश नहीं हूं, मैं प्राणमय कोश नहीं हूं, मैं मनोमय कोश नहीं हूं, मैं विज्ञानमय कोश नहीं हूं, मैं आनंदमय कोश नहीं हूं, ऐसा मानो भेदन करना। अन्नमय कोश का केंद्र है देह या शरीर, प्राणमय कोश का उसका केंद्र है पंच प्राण, उसी प्रकार मनोमय कोश का केंद्र मन, विज्ञानमय कोश का जो केंद्र है वह है बुद्धि, और जो आनंदमय कोश है उसका केंद्र है अहंकार। तो मानो हम एक एक स्थान पर धीरे धीरे प्रहार करते हैं, ध्यान की तीव्रता लाते हैं, मानो ध्यान हमारा इतना गहरा होता है कि यह शरीर आया ध्यान में, मैं शरीर नहीं। तो शरीर को चलाने वाली जो प्राण शक्ति है, ध्यान के माध्यम से मैं प्राण शक्ति का अनुभव कर सकता हूं। जैसे मैं उंगली को हिला रहा हूं, कैसे हिला रहा हूं, उंगली में नसें हैं, नसों के भीतर में रक्त का संवहन होता है, और जब लकवा मार जाता है तो उंगली नहीं चलती है। लकवा मारने का मतलब कि रक्त इन नसों में बहता नहीं, और जब नहीं बहता तो उसको कहते हैं लकवा मार जाना, पैरालिसिस होना, फिर वह अंग चलता नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर भीतर में रक्त का संवहन हो रहा है, मानो प्राण के द्वारा फुफ्फुस धौंकनी के समान चल रहा है, और नसों में वह रक्त दौड़ाता है, इसको कहते हैं प्राण की क्रिया, और उसको कहते हैं वाइटल शील, प्राणमय कोश। और यह कैसे चलता है, मन चलाता है। मन को कौन चलाता है, बुद्धि चलाती है। बुद्धि को कौन प्रेरित करता है, अहंकार प्रेरित करता है। मानो इस प्रकार से नेति नेति करते हुए जाना, यह शरीर में क्या मेरा स्वरूप है, नहीं न इति। फिर क्या मैं प्राण हूं, नहीं मैं प्राण भी नहीं हूं। क्या मैं मन हूं, मैं मन भी नहीं हूं। क्या मैं बुद्धि हूं, बुद्धि भी नहीं हूं। क्या मैं अहंकार हूं, अहंकार भी नहीं हूं। तब फिर मैं क्या हूं, जो इन सब पांचों कोशों का निषेध कर देने पर बचा रहता है वही मैं हूं। वह इति की अवस्था है, वह आत्म तत्व है, यह एक प्रक्रिया है। और ये जो पंच कोश है तो वही मानो तीन शरीर, तीन शरीर, यह जो त्रिशरीर भेदन या पंचकोश भेदन, यह एक ही बात है। त्रिशरीर का मतलब जैसे यह स्थूल शरीर है, उसके भीतर में सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर में कारण शरीर है। तो यह जो अन्नमय कोश है आइडेंटिकली इक्वल टू स्थूल शरीर, और यह जो सूक्ष्म शरीर है दैट इज आइडेंटिकली इक्वल टू प्राणमय कोश प्लस मनोमय कोश प्लस विज्ञानमय कोश, और जो हमारा कारण शरीर है दैट इज आइडेंटिकली इक्वल टू आनंदमय कोश। तो चाहे आप पंच कोशों का भेदन कहें कि पांच कोशों ने लपेट लिया है मानो आत्म तत्व को, या तीन शरीरों ने इस आत्म तत्व को बंदी बना करके रख लिया है, किसी भी भाषा में कहें, पर लक्ष्य तो वही है। कोई शरीर का भेदन करते हुए जाते हैं, वह कोई कहते हैं कि मैं तो ऐसी साधना करूंगा कि इस स्थूल शरीर से ऊपर उठूंगा, फिर सूक्ष्म शरीर में आऊंगा, सूक्ष्म शरीर का भेदन करूंगा, कारण शरीर में आऊंगा, फिर कारण शरीर का भेदन करके मैं वहां पहुंच जाऊंगा जो मेरी अपनी अवस्था है, जो मेरा अपना स्वरूप है, उसमें मैं स्थित हो जाऊंगा। या ज्ञान की दृष्टि से और ध्यान योग की दृष्टि से कहें तो कुंडलिनी का जागरण है, वहां पर षट चक्र भेदन है, माने है सब पर अलग अलग विधा है। अब जिस विधा में जिसकी मानसिक रुचि हो जाती है वह उस रास्ते से चलता है। तो जैसे कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया, वह साधना की बात भी हमें छठे अध्याय में दिखाई देती है, उसका भी वर्णन करें। तो यहां पर हमने कहा चाहे वह पंचकोश भेदन हो, चाहे त्रिशरीर का भेदन हो, तो उस अवस्था को प्राप्त करना जो हमारा अपना स्वरूप या ज्ञान की विधा है। अब यह जो तीन शरीर का भेदन, तीन शरीर का मतलब जैसे हम यह मानते स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर में ये क्रियमान कर्म होते हैं, तीन प्रकार के कर्म के संस्कार आपने पढ़े होंगे, आप जानते होंगे कि ये जो कर्म के संस्कार होते हैं तीन प्रकार के, एक तो संचित संस्कार है, एक प्रारब्ध संस्कार है और एक क्रियमान संस्कार है। ये तीन हैं कर्म के तीन प्रकार। और ये जो संस्कार पैदा होते हैं, जैसे हम कर्म करते हैं तो कर्म से एक संस्कार पैदा होता है, मैंने कोई क्रिया की तो क्रिया का एक इम्प्रेशन होता है, एक संस्कार होता है। कर्म तो खत्म हो गया, क्रिया समाप्त हो गई, पर यह संस्कार खत्म नहीं होता है। संस्कार सूक्ष्म रूप में जाकर के हमारे भीतर में जमा हो जाता है, इसको कहते हैं संस्कार।